आज की बात। श्रोताओं, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत के मौजूदा हालात की। भारत में हालिया दिनों की घटनाओं पर मशहूर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने चिंता जताई।
फिक्र मुझे होती है अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि कल को उन्हें कोई अगर एक एक, एक भीड़ ने घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। इस बात की फिक्र होती है, क्योंकि हालात जल्दी सुधरते तो मुझे नजर नहीं आ रहे। इन बातों से मुझे डर नहीं लगता, गुस्सा आता है। और मैं चाहता हूं कि हर राइट थिंकिंग इंसान को गुस्सा आना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए। हमें, हमारा घर है, हमें कौन निकाल सकता है यहां से? ये जहर फैल चुका है और इसको दोबारा इस जिन को बोतल में बंद करना बड़ा मुश्किल होगा। खुली छूट मिल गई है कानून को अपने हाथों में लेने की। कई 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 इलाकों में हम लोग देख रहे हैं कि एक गाय की मौत को ज्यादा अहमियत दी जाती है एक पुलिस अफसर की मौत के बनिस्बत।
नसीरुद्दीन शाह ने जैसे ही चिंता जताई, उन पर चौतरफा हमला शुरू हो गया। हमला करने वालों में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तथा सहयोगी संगठनों से जुड़े लोग या उनकी ओर झुकाव रखने वाले लोग थे। नसीरुद्दीन शाह पर एक अन्य अभिनेता अनुपम खेर ने भी प्रहार किया।
हर एक को पूरी पूरी आज़ादी है देश में कुछ भी कहने की। ये इसमें बहुत बड़ी बात है कि आदमी जो कहना चाहे बोल सकता है। ये ऐसा देश में इतनी हमने हमारी यहाँ इतनी आज़ादी है कि आप सेना को भी गाली दे सकते हैं, आप एयर चीफ को भी बुरा भला बोल सकते हैं, आप सैनिकों पे पथराव भी कर सकते हैं। कि इससे ज़्यादा आज़ादी क्या चाहिए किसी भी देश में? और किसी देश में मुझे लगता है ऐसी आज़ादी नहीं है। तो उनको भी आज़ादी, जो उनका दिल किया उनको बोलने दीजिए, ज़रूरी नहीं कि वो सच है।
अनुपम खेर को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के प्रशंसकों में गिना जाता है। जहां तक हालात की बात है तो केवल नसीरुद्दीन शाह नहीं बल्कि दूसरे भी बहुत से लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं। एक कार्यक्रम में बोलते हुए वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अपने विशेष अंदाज में हालात का जायजा पेश किया और साथ ही जिम्मेदारियों को रेखांकित करने की भी कोशिश की।
किन परिस्थितियों में हम लोग काम कर रहे हैं और किन परिस्थितियों में देश को आगे ले जाना चाह रहे हैं, तो आपका हमारा योगदान क्या होना चाहिए? कुछ ही चेहरे हैं यहां पर यंग, बहुत चेहरे नहीं है, लेकिन हायर एजुकेशन की स्थिति हम एक डर भी देख रहे थे। हमने देखा मन्नान साहब बोल रहे हो, चाहे अभी धर्म के बारे में जिक्र हो रहा था, इस देश के भीतर अगर डेमोक्रेसी होती और स्वतंत्रता होती तो ये खुले तौर पे बोलते। हमें लग रहा है कि हमारा मुस्लिम समाज सहमा हुआ है, सिमटा हुआ है, उसने मई 2019 तक खामोशी बरतना तय कर लिया है। इसका मतलब है वो मई 2019 तक हमारे देश का न मुस्लिम समाज इस देश का नागरिक है, और अब तो दलित भी खामोश हो गया तो वह भी नागरिक नहीं है। तो आप क्या करोगे? अब किन परिस्थितियों में इस देश को ले जा रहे हैं और आपका हमारा योगदान क्या होना चाहिए? जहां पर हम इस बात की चर्चा करने बैठे हैं कि संविधान काम नहीं कर रहा है, आपका इकोनॉमिक मॉडल सिर्फ पॉलिटिकल मॉडल के तौर पर आपको सत्ता में कैसे बनाए रखेगा, उसी हिसाब से काम करने की परिस्थितियों को डेवलप किया जाए, यही है। और मीडिया या कोई भी स्तंभ हो वो उसी रूप में काम कर रहा है। काम करने दीजिए जो काम कर रहा है, सम्मानित करके उसे डिस्टर्ब मत कीजिए। हमें लगता है ये स्थिति है, आप इस रूप में मत जाइए, अपने आप को डिजाइन मत कीजिए इस तरीके से। हमें कोई अंतर नजर नहीं आता है जब कोई सेल्फी लेता है और उस पर लाइक खोजता है और आप कहीं पर मंच पर खड़े होकर कुछ बोल के एक वक्त जाहिर करके कि हमको 3 बजे से 5 बजे तक का प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम करके आप चले जाएंगे। सवाल सबसे बड़ा ये हो चला है कि हमारे देश का मॉडल एक ऐसा पॉलिटिकल मॉडल हो गया है जिसमें चुनाव जीतना ही सबसे महत्वपूर्ण है। कोई पॉलिटिकल नैरेटिव हमें आप बताइए, पिछले 3 राज्यों में जो कांग्रेस जीत गई, क्या कांग्रेस के पास कोई पॉलिटिकल नैरेटिव है इन 3 राज्यों को लेकर जीत गई? यह तो संयोग ऐसा है कि हमारे यहां सत्ता ऐसे हाथों में अचानक आ गई है जिसमें हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो बोल रहा है वो कांग्रेसी हो गया है, या उस कांग्रेस को लगने लगा है वो हमारा हो गया है, पूरा बौद्धिक जगत वैसा हो गया है। इसका मतलब क्या है? हमें तो ऐसा नहीं लगता है, हम तो देख चुके हैं उस समय जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय भी हमने उस रूप में काम किया है। अंतर आया है, बहुत भयावह अंतर आया है। मौजूदा वक्त में बीजेपी की सत्ता नहीं है, यह हर कोई जानता है। एक दो नाम है जिनके चेहरे नजर आते हैं वो उस रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा मॉडल ये तो नहीं था डेमोक्रेसी का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसकी इजाजत नहीं देता है। कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहा है, डेमोक्रेसी है नहीं, और इलेक्शन में जीत हार के बाद हम डेमोक्रेसी खोजने निकल रहे हैं।
वरिष्ठ पत्रकार और एंकर रवीश कुमार का ये मानना है कि नागरिकों को जागरूक होना चाहिए और हालात पर उनकी नज़र रहनी चाहिए तथा समाज में विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों पर उनकी प्रतिक्रिया भी जरूर होनी चाहिए। उनका मानना है कि नागरिक बनना काफ़ी कठिन काम है।
लोकतंत्र में नागरिक होना IIT के इम्तहान से भी की तैयारी से भी मुश्किल काम है। मेरे सामने यही एक पैमाना था कि IIT की तैयारी बहुत मुश्किल चीज़ है, तो उससे मैं जोड़कर देखता था और ये सचमुच बहुत मुश्किल काम है। नागरिकता की तरफ आपको ले जाने का मतलब वो रास्ता आपको हर तरह के संकीर्णताओं से और हर तरह की के सामाजिक अनुभवों से काट कर ले जाता है और आपको एक बिल्कुल नई दी गई हुई किताब के हिसाब से आपको अपनी भूमिका तय करनी पड़ती है। लेकिन उस भूमिका को तय करते हुए भी भारत में कम से कम अगर आप नागरिक हैं तो बहुत तरह की और भूमिकाएँ आपके साथ जुड़ जाती हैं जो आपसे इंसाफ के स्तर पर मांग करती हैं। सामाजिक न्याय की भूमिका हो सकती है, वो जेंडर लैंगिक समानता की भूमिका हो सकती है। तो बहुत ही एक रेखा, सीधी रेखा नहीं है नागरिक होने की। अंत में जाकर हम सब एक जैसे हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम नागरिक न्याय की बात नहीं कर पाते हैं। और अगर हम लोकतंत्र की कल्पना किसी आदर्श रूप में कहीं किसी रूप में बची हुई है या होती होगी तो वो एक नागरिक न्याय के रूप में ही बची होनी चाहिए, पर वो रास्ता बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। इतनी समझ बनाने के लिए एक आदमी के पास वक्त नहीं है, एक जीवन नहीं कम पड़ जाता है। ये बहुत ही मुश्किल रास्ता है, पर इसी को बनाना है, इसी को आपको तोड़ना है। और जो नए लोग हैं, हम जैसे लोग थे जब आए थे तो बिल्कुल शून्य ज्ञान से इसमें प्रवेश करते हैं और ईमानदारी से कहें तो 6-7 साल पहले तक तो कुछ भी पता नहीं था। और जब इस भूमिका में आप प्रवेश करते हैं तो लगता है कि अब कितना कुछ जाना जाए। रोज जानने की जो लड़ाई है उसी से लड़ते लड़ते आप एक तरह से आप अपने भीतर 1000 बार टूटते हैं। तो दरअसल आप बाहर जितना नहीं बना रहे होते हैं उतना कहीं अंदर बन रहे होते हैं। तो इसलिए जो नागरिकता की जो भूमिका है और उस एक नागरिक होने की लड़ाई जो है वो पीड़ादायक है। उसका नतीजा दूसरों के लिए बहुत अच्छा लगता होगा कि वो हीरो लगता होगा, पर कई बार लगता है कि हम लोहिया के लिखे हुए अनुभवों को नहीं जानते हैं, हम अंबेडकर की सारी बातों को नहीं समझते हैं और इन सब के पीछे बहुत तरह के लेयर्स हैं जिनको नहीं समझते हैं। पर क्या इनको समझे बिना हमारी कोई भूमिका तय हो सकती है, हमारी कोई भूमिका है? वो हो सकती है, लेकिन अंत में जाकर आपको इन सब सवालों के साथ टकराना पड़ता है और उसका एक रास्ता निकालना पड़ता है।
प्रोफेसर अपूर्वा नंद एक बड़े विचारक और शिक्षाविद हैं। उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों के परिप्रेक्ष्य में बोलते हुए कहा कि जब भी भीड़ हमला करती है तो वो एक खास साजिश के तहत ऐसा करती है। कुछ लोग होते हैं जो इस भीड़ को तैयार करते हैं, दरअसल वो भी भीड़ तंत्र और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को उद्धृत कर रहे थे जिस पर नसीरुद्दीन शाह ने चिंता जताई थी।
सज्जन कुमार को जो सजा दी गई है उससे एक बात और साबित होती है, वह यह कि इस तरह के हत्याकांड अपने आप नहीं होते हैं, भीड़ अपने आप नहीं बना करती है, भीड़ बनाई जाती है। इस तरह के हत्याकांड का षड्यंत्र रचा जाता है, उसकी तैयारी की जाती है और उसके बाद लोगों को अनाम भीड़ में तब्दील कर दिया जाता है। जिन पर हमला किया जाता है उनको भी एक खास पहचान में शेष कर दिया जाता है और इसका अर्थ यह है कि यह एक साजिश है, यह एक तैयारी है और इसके पीछे एक दिमाग है। वह दिमाग हत्याएं करवाता है। इसलिए 1984 के साथ जिन सारी तारीखों को दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने नोट किया है, वह 1993 हो, वह 2002 हो, वह 1979 हो, इन सारी तारीखों में हुए हत्याकांडों के पीछे के साजिशी दिमाग को पहचानना ज़रूरी होगा और उन्हें भी सज़ा दिलाना ज़रूरी होगा। और यह भी याद रखें कि निरप्रीत और जगदेश ने तो इंसाफ हासिल कर लिया, लेकिन आज उसी अखबार में यह खबर है कि मोहसिन शेख के पिता मोहम्मद सादिक शेख की मौत हो गई है। और हमें याद करना पड़ेगा कि मोहसिन शेख कौन थे। 2014 को मोहसिन शेख की पुणे में पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान थे। उनकी हत्या भी एक तरह से सामूहिक हत्या है, उनकी हत्या भी एक तरह से नस्ल कुशी की हत्याओं की श्रेणी में आती है, क्योंकि मोहसिन शेख को किसी जाति दुश्मनी की वजह से नहीं मारा गया था, मोहसिन शेख को पागलपन के किसी दौरे में नहीं मारा गया था, बल्कि मोहसिन शेख को सिर्फ मुसलमान होने के चलते मारा गया था। और मोहसिन शेख के कत्ल का इंसाफ कौन खोज रहा था? निरप्रीत और जगदेश की तरह मोहसिन शेख के पिता मोहम्मद सादिक शेख, और आज उनकी मौत की खबर है। फिर मोहसिन शेख की हत्या का इंसाफ कैसे होगा? क्या वह लड़ाई रुक जाएगी? क्या उसका जिम्मा हम सब लोग लेंगे या नहीं लेंगे? जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता है, हमें दिल्ली उच्च न्यायालय के इस फैसले पर खुशी और तसल्ली जाहिर करने का कोई हक नहीं है।
समस्या यहीं पर है कि जैसे ही हालात के बारे में कोई चिंता व्यक्त करता है, उस पर चौतरफा हमला शुरू हो जाता है और ये आरोप लगाया जाता है कि वो पहले की घटनाओं पर क्यों नहीं बोला। कुछ लोग गद्दार कहते हैं और कुछ भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाने का सुझाव देते हैं। नसीरुद्दीन शाह के मामले में भी यही हुआ कि उन्हें कुछ लोगों ने गद्दार कहा और किसी ने उन्हें पाकिस्तान जाने का टिकट भेजा। यानी वर्तमान सरकार और किसी विशेष राजनीतिक सोच रखने वाले धड़े पर यदि किसी ने कोई टिप्पणी की तो इसे देश पर हमला मान लिया जाता है और इसे देश को बदनाम करने की कोशिश कहा जाता है। बहरहाल, भारत के ही समाज में बहुत से लोग हर समुदाय में हैं जो इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी का अटूट हिस्सा मानते हैं। शायद यही भारत की खूबसूरती भी है कि वहाँ हर विचार पनपता और परवान चढ़ता है। कभी टकराव की स्थिति भी पैदा होती है, लेकिन भारत का बहुलतावाद अब तक अपनी जगह पर मजबूती से कायम है।